इप्सिता की ये बात नंदिनी को काफी खटकी। उसने अपने कंधे उचकाकर उसके कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, हो सकता है उसके सर में हल्का दर्द हो रहा हो, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नंदिनी उसके कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, इशू हम ब्रेकफास्ट टेबल पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाना। इप्सिता ने वॉशरूम के अंदर से ही कहा, हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। इतना बोलकर इप्सिता फटाफट फ्रेश हुई। ऑफिस के लिए उसने बड़े ही कैशुअल कपड़े पहने। उसने व्हाइट कलर का फ्लावर प्रिंट वाला एक टॉप पहना जिसकी बैलून आस्तीन थी, और नीचे व्हाइट कलर की ही एक जीन्स पहनी। उसने अपने बालों को यूं ही खुला रखा और चेहरे पर हल्का मेकअप करके वो सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उदय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ईशी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गई। इप्सिता ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई, हाँ आज शायद मेरी आंख लग गई थी और मैं समय से उठ नहीं पाई। उदय ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इट्स ओके, चलो ब्रेकफास्ट करो फिर हम साथ में निकलते हैं। इप्सिता ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठने जा ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। नंदिनी की माँ ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा। वो अपनी चेयर से उठने जा ही रही थी कि तभी इप्सिता ने कहा, आंटी आप बैठिए मैं देखती हूँ। इतना बोलकर इप्सिता सीधे गेट की तरफ ही बढ़ गई, और उसने जैसे ही गेट खोला उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभिमन्यु। वहाँ दरवाजे पर उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने इप्सिता को सिर से लेकर पांव तक देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ हम यहाँ अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं, और साथ ही ये बताने आए हैं कि हमने उस दिन इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन हमें आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है, इसलिए प्लीज यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट मत करिए और जाइए यहाँ से। इप्सिता अभिमन्यु के मुंह पर ही दरवाजा बंद करने जा रही थी कि अभिमन्यु ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में लगाते हुए कहा, अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो अपनी बात कहे बिना तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, अपना हाथ हटाइए। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिला दिया। तभी उदय ने इप्सिता की तरफ देखा और तेज आवाज में बोलते हुए पूछा, क्या हुआ ईशी कौन है। इप्सिता ने जैसे ही उदय की आवाज सुनी उसने धीमी आवाज में कहा, कोई नहीं भाई, शायद कोई गलती से यहाँ आ गया है। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ दरवाजे के बीच से हटाया और उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी, लेकिन अभिमन्यु अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। इप्सिता ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, हमने आपसे कहा जाइए यहाँ से। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही नंदिनी और उदय दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी उदय अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ आते हुए बोला, क्या बात है ईशी कौन है। उदय की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और पूरा गेट खोलते हुए कहा, हम हैं। जैसे ही उदय और नंदिनी ने गेट पर अभिमन्यु को वहां दरवाजे पर खड़े देखा उन दोनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। नंदिनी अभिमन्यु की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, जीजू। जैसे ही नंदिनी ने जीजू कहा उदय अभिमन्यु के करीब आया और उसने इप्सिता का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। इप्सिता उदय के इस प्रोटेक्टिव बिहेवियर को देखकर समझ गई कि अगर अभिमन्यु ने उससे बात करने की जिद की तो शायद उदय उससे लड़ जाएगा। अपने मन में ये सब सोचकर इप्सिता का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी नंदिनी इप्सिता के बगल में आकर खड़ी हो गई। उदय ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, अभिमन्यु आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उदय को इस तरह गुस्से में देखकर अभिमन्यु ने बड़ी ही शांति से कहा, उदयवीर हम यहाँ पर इप्सिता से बात करने आए हैं। उदय ने जैसे ही ये बात सुनी उसने गुस्से में एक कदम आगे बढ़कर अभिमन्यु का कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू, अभी भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इशी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत देर कर दी आपने, बेहतर होगा कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपकी यहाँ पर किसी को कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें आपकी कोई बात सुननी है। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम जानते हैं उदयवीर आपका मुझ पर इस तरह गुस्सा करना जायज है, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। उदय ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, नहीं सुननी हमें आपकी कोई भी बात, हमारी इप्सिता की लाइफ से चले जाइए और आइंदा कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। इतना बोलकर उदय ने अभिमन्यु को पीछे पुश किया और उसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर धकेलने लगा। अभिमन्यु उदय के गुस्से को समझ रहा था, उसने उदय पर एक बार भी पलटकर वार नहीं किया ना ही उसे ऐसा करने से रोका। अभिमन्यु ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, उदय हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें इप्सिता को मंडप में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। उदय अभिमन्यु की ये बात सुनकर एक पल के लिए रुका और अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बस एक बार आप सब हमारी बात सुन लीजिए, हम आप सबको पूरी सच्चाई बता देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। उदय उसकी बात सुनकर बिल्कुल शांति से उसकी तरफ देख रहा था। तभी इप्सिता ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं सुननी हमें आपकी कोई भी बात, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन उसके अलावा और भी रास्ता हो सकता था, इसलिए अब हमें नहीं जानना कुछ भी, आप बस चले जाइए यहाँ से, हम अपने भाई और भाभी के साथ बहुत खुश हैं, हमें आप जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है, सुना आपने। इतना बोलकर इप्सिता उदय के सामने आई और उसने अभिमन्यु को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, जाइए यहाँ से और आइंदा कभी यहाँ मत आइएगा। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसके गालों को छूने वाला था। तभी उदय ने जैसे ही उसे ऐसा करते देखा उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलकर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु
आप हमारी बहन को हमारी आंखों के सामने छूने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आप मजबूर मत करिए। अगर हम अपने आप पर उतर आए तो बहुत गलत होगा। उदय पहले ही उसे वहाँ पर देखकर गुस्से में था। उस पर से इप्सिता को ऐसे देखकर और अभिमन्यु का जिद्दी बर्ताव उसका गुस्सा और भी बढ़ा रहा था। उसकी ये बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, उदय आप बहुत समझदार हैं, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम भी अपनी बात कहे बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और वैसे भी इप्सिता हमारी होने वाली पत्नी है, तो हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं। अभिमन्यु अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उदय बीच में बोल पड़ा, होने वाली पत्नी है? नहीं थी, आप मंडप में छोड़कर चले गए थे, याद होगा आपको, इतनी भी पुरानी बात नहीं है, अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। उदय ने बहुत ही कड़वाहट से ये बात कही और उसी तरह अभिमन्यु की तरफ देख रहा था। अभिमन्यु को और कोई शब्द नहीं मिले तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से धीमी आवाज में बोला, हाँ सब याद है हमें, और वही सब ठीक करना चाहते हैं हम, हमें बस एक मौका चाहिए अपनी बात रखने का। उदय ने जब देखा कि अभिमन्यु जबरदस्ती जिद कर रहा था तो उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी आप इसी को अंदर ले जाइए। इतना बोलकर उदय ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी तुरंत आगे बढ़ी, उसने इप्सिता का हाथ पकड़ा और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, आपने बहुत गलत किया है जीजू, मुझे नहीं लगता कि आपका अब इशू पर कोई भी हक बनता है, आपका यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। अभिमन्यु ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, बेशक हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको हमारी बात सुननी होगी। आपको समझ नहीं आता है क्या, उस दिन बहुत कुछ गलत हो सकता था जिसे रोकने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा।
उदय ने गुस्से से अभिमन्यु का कॉलर पकड़ा, वो उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अभिमन्यु बस बहुत हुआ, अभी यहाँ से चले जाइए वरना हम आप पर हाथ उठा देंगे। नंदिनी अभिमन्यु और उदय को लड़ते हुए नहीं चाहती थी। नंदिनी ने जल्दी से इप्सिता का हाथ छोड़ा और वो उदय के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, उदय आप ये क्या कर रहे हैं, रुकिए। इप्सिता ने जब उदय को इस तरह अभिमन्यु पर हाथ उठाते हुए देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो काफी डर गई थी। वो तुरंत ही भागकर अभिमन्यु के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर लाते हुए कहा, ठीक है आपको हमसे बात करनी है ना, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आप अभी यहाँ से चले जाइए। हम नहीं चाहते कि उदय भाई और आपके बीच में कोई भी हाथापाई हो, इसलिए प्लीज अभिमन्यु। अभिमन्यु इप्सिता की आंखों में देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने जैसे ही ये बात सुनी उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रॉमिस करिए कि आप अपनी बात से मुकरेंगी नहीं। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है हम आपसे बात करेंगे, और आपको जहाँ मिलना होगा हम खुद आपको मैसेज करके बता देंगे, बस अभी आप यहाँ से जाइए। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी उसने इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ठीक है अभी तो हम जा रहे हैं इप्सिता, लेकिन अगर आप हमसे मिलने नहीं आई तो हम फिर से दोबारा यहाँ आएंगे। जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात निकली इप्सिता ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आपको यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमने कहा है कि हम आपसे मिलेंगे तो हम मिलेंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा, वो जितने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रही थी उसे देखकर अभिमन्यु समझ गया था कि इप्सिता उससे मिलने जरूर आएगी। इसलिए भले ही उस वक्त वो वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इप्सिता की बात मानकर वो चुपचाप वहां से चला गया। तभी इप्सिता जल्दी से घर के अंदर आई। उसने देखा कि उदय काफी ज्यादा गुस्से में था। नंदिनी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इप्सिता उदय के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई अभिमन्यु चले गए हैं, प्लीज आप शांत हो जाइए, आपको इस तरह उनके साथ हाथापाई करने की जरूरत नहीं थी। इतना बोलकर इप्सिता उदय की तरफ देखने लगी। तभी उदय ने उसे सोफे पर आराम से बिठाते हुए कहा, इप्सिता मैं जानती हूँ तुम अभिमन्यु को अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहती हो, तुम इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इप्सिता ने उदय की बात सुनी और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई आप प्लीज अभिमन्यु को लेकर ज्यादा कुछ मत सोचिए, वैसे भी हम उदयपुर छोड़कर इसीलिए यहाँ पर आए थे ताकि हम इन सारी लड़ाई झगड़ों से दूर रह सके, अगर यहाँ रहकर भी हमारे सामने बार बार इस तरह के लड़ाई झगड़े होंगे तो हमें नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर आना का फैसला सही साबित होगा, इसलिए प्लीज आप खुद को शांत रखिए और जितना ज्यादा हो सके इस लड़ाई झगड़े से दूर रहिए।